نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي للجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الوال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد حدیث کا مفہوم ایسے ہے کیونکہ صحابہ کرام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن رات اعمال کے بارے میں سنتے تھے، نیکیوں کے بارے میں سنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے اعمال کی تعلیم فرماتے، نیکیوں کے بارے میں تقریر فرماتے، اور پھر ان کے انعامات ثواب بیان فرماتے. اور وہی باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو نیکی کمانے کے ایسے موقع عطا فرمائے ہیں کہ جب تک انسان کا سانس چلتا رہے ہر سانس میں وہ نیکی کما سکتا ہے، اور ہر نیکی پر اللہ پاک نے انعام رکھا ہے. اور اسی طرح عبادات ہیں، نوافل ہیں، ایسے ایسے چھوٹے کلمے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے انعام رکھے ہیں. سنتے رہتے ہیں، ابھی حدیث میں پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو صحابہ کرام نے جب سب چیزیں دیکھی تو انہوں نے عرض کیا ایک دفعہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس قدر اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ہماری نیکیوں پر اللہ نے اتنے بڑے بڑے ہمیں ثواب عطا فرمائے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. تو یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی بات کہ اس قدر ثواب مل رہے ہیں ہمیں، اس قدر ہم کر بھی رہے ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں، سبحان اللہ کہہ دیں کتنی بڑی نیکی ہے، الحمدللہ کہہ دیں کتنا بڑا ثواب ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کتنا بڑا ثواب ہے، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کتنا بڑا ثواب ہے. اب یہ دیکھیں تو بہت سی نیکی تو ہم لاوبالی طور پہ کر جاتے ہیں، کانشیسلی کر لیتے ہیں، پتہ ہی نیکی ہے، لیکن ثواب پھر بھی لکھا جاتا ہے اللہ کے فضل سے. سورس کی کہ یہ جب سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتی ہیں بات کہ کل روز قیامت میں حشر کے میدان میں آدمی کیسے برباد ہوں گے، کس طرح مصیبت میں جا سکتے ہیں وہ لوگ، اتنے بڑے بڑے ثواب ان کے پاس ہوں گے. تو یہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے بات کہ ہم کیسے لوگ جو ہوں گے اس میں برباد ہو سکتے ہیں قیامت کے روز حشر میں، تو ہے ہی نہیں اس معاملے سمجھ آ رہا. تو ایسا ہوگا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوگا، ایسے لوگ برباد ہوں گے قیامت میں ضرور ہوں گے. اور یہ نہیں کہ عمل نہیں ہوں گے، وہ تو ہے، نیکیاں تو بہت ہیں، کریں گے، بہت بہت کریں گے نیکی. لیکن اس اللہ کا فضل ہو رہا ہے، ہم لوگ الحمدللہ اللہ توفیق دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور رمضان آ رہا ہے، ابھی شعبان تھا، اللہ بڑی بڑی راتیں دیتے ہیں، ہمیں عمل کی بھی توفیق دیتے ہیں، سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. اب ماشاء اللہ آپ دیکھیں گے، آپ اس وقت रमजान आ जाए तो मक्का और मदीना मुनव्वरा में तो कोई जगह भी नहीं होगी कि चप्पे के बराबर जगह नहीं होगी। यानी एतकाफ में इतने लोग होते हैं कि आपको चलना दुश्वार हो जाता है, मक्का मुकर्रमा में तो बड़ा मुश्किल होता है कि भाई आप लोगों को कैसे फैलाएंगे। इस कदर एतकाफ मुतकिफ होते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह बेताशा, अजीब सीन अल्लाह की रहमत का सुबह मुताफ होता है, मुताफ में जाएँ तो जब तवाफ़ हो होता है सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, तो रात दिन और सहरी के बाद सहरी से पहले ताबियों के बाद एक सीन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह नहीं कि हर आदमी जो काम कर रहा होता है, कोई खजूर खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम बार नेकियों को होते हैं तो ये सारे नज़ारे आदमी देखता भी होता है, या तो यार जन्नत ही है, मोहर लगी हुई इन पर तो देखने वाला सोचता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लेकिन नहीं होंगी यही नेकियां इनके पास, यही उम्रें होंगे, ये हज होंगे, ये सब कुछ होंगे, ये जिक्र असगार होंगे, लेकिन बहुत बर्बाद हो जाएंगे, होंगे बर्बाद। अब यह नुकता आप समझ लें, मैं भी समझ लूँ, कहने का मतलब यही है, असल नुकता आ रहा है बात का जो हमने सुनना है इस हदीस में, इम्पोर्टेंट रुख आ रहा है पॉइंट, जो समझना चाहे ना, जो जो शौक रखता है आखिरत को, बातों पर यकीन रखता है और कल फिक्र है मौत का, तो उसके लिए अर्ज कर रहा हूँ, वरना तो बातें आती जाती रहती हैं, रोज तकरीरें सुनते हैं इधर से गई इधर से गई, अभी तालीम हो रही थी किसने पाए। तो बस अल्लाह पाक से तौफीक करके ये है कि अल्लाह ताला हमें बस ऐसी समझ दे कि सुनने के बाद हमारे दिल पर उतर जाए बात, अल्लाह ही उतार सकता है। सब बैठे हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े नेकी वाले बैठे हैं, लेकिन हम उनमें शुमार हैं जिस पर अल्लाह पाक अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि नहीं ये बर्बाद होंगे, आ जाए कुछ भी ले आए माल। यहाँ तक फरमाया कि अगर इनके पास ये लोग इतनी नेकी लेकर आएंगे, अगर की बात ही नहीं है हदीस के लफ्ज़ से, लोग इतनी नेकियों के साथ आएंगे कि इतनी नेकी इनके पास होंगी, जो लोग आएंगे अल्लाह बोले अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी नेकी होंगी, अगर किसी पहाड़ पे उस इंसान की नेकियों को रखता जाए तो पहाड़ दब के रह जाए। हमें नेकी आप खुद सोचें अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये एक आपने नमाज पढ़ी इसकी क्या आप पता कितनी नेकी होगी, आप तो ये समझें बस हम खड़े होकर नमाज पढ़ ली। मेरे भाइयों जब से इरादा हमने किया होगा इस नमाज पे चलने का, बोले सुभान अल्लाह, जब से मेरे अल्लाह ने इरादा पैदा किया होगा हमारे दिमाग में, क्यों करोड़ों इरादों को खत्म करके इरादा आया है, किसी उससे पूछे जो सब गुनाह के इरादों में गुम होगा, उस पर अमल भी किया होगा, उस चला भी गया होगा, करोड़ों इंसान होंगे। अगर इसकी तनासुब निकाले ना, एक का इरादा बन रहा है नमाज का इरादा पैदा हो रहा है, उसके मुकाबले में करोड़ों इंसान आप देखना तनासुब निकालें जिनके इरादे बड़े फजूल इरादे होंगे औरत मर्दों के। तो ये हम अभी आगे बात आ रही है इसकी, मेरे मौला ने इरादा बनाया, जिस जब इरादा बनाया अल्लाह ताला ने तो करोड़ों शैतानों को शिकस्त देकर उस इरादे ने जन्म लिया हमारे वजूद के अंदर। बोले सुभान अल्लाह, सोचा करें ये बातें, हमारे बाप ने नहीं इरादा पैदा किया, ये किसने पैदा किया? आप जो यहाँ जिक्र पे आ गए, किसने कौन ले आया आपको? बिल्कुल मूड नहीं होगा कभी, बहुत से समय मूड नहीं होता, आधे घंटे मूड नहीं होता, एक घंटे मूड नहीं होता, लेकिन कुर्बान जाओ उसकी जात का, पहुंचाने वाली उसकी जात है। तू कौन है मूड बनाने वाला, देख तुझे किस तरह पहुंचाता हूं मैं जिक्र के अंदर, खान पकड़ के उस जिक्र पे बिठा देता उसको, इसकी जात है। उसका दिल माने ना माने, तभी चाहे ना चाहे, बकवास करता रहे, शैतान धोखा देते रहे, अरे कहता तेरा काम जो काज कर, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं बस रहम करना चाहता हूं, खान पकड़ के उसको सीधा बिठा देते हैं उस जगह को, होता ही नहीं होता, ये इरादे हैं। तो उस वक्त से नेकी शुरू हुई है जब से मैंने इरादा किया कि यार जाएंगे मक्की मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह चलेंगे, फिर इरादा बना, इरादे की तंगी बड़ी बात है, उसकी रुकावटों को खत्म करना किसकी ताकत है, ये सिस्टम क्या है, इरादा बन गया आखिर तो पहाड़ है पहाड़, उस इरादों को तकमील करने के लिए करोड़ों बीमारी ऐसी है कि आप एक कदम नहीं उठा सकते और उसकी कोई सिम्टम्स नहीं होती, कोई निशानी नहीं होती, माइग्रेन शुरू होता है कोई सिम्टम्स होते हैं उसके, आंख में दर्द होता है उसकी बात खुली होती, पाँव में जो मोच आते हैं, बस जी मैं तो ऐसे उठा था एकदम पाँव मुड़ गया, नहाने गए गुजर खाने में लहू लहान हो गया, क्या जी तो मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था जी, बस बाहर निकलने लगा था पाँव फिसल गया। अभी आए हुए डॉक्टर याद आ रहे हैं, बड़े अच्छे इंसान थे, हमारे उनसे मुलाकात हुई थी, वो नाम याद नहीं आ रहा सब, तो मिलने में गया हॉस्पिटल में उनसे, उम्र से जो मोहब्बत हो जाए इंसान से, बहुत जक लख्त उनकी ज़िंदगी बदली थी। ये पढ़ते थे आज़ा नवाज में, आज याद आ गया इस बात पे, अल्लाह ताला की जन्नत नसीब फरमाए उनको। कोई दाढ़ी शाड़ी कुछ नहीं थी, शादी भी यहीं की थी उन्होंने, बड़े मॉडर्न किस्म का डॉक्टर आप सब जानते हैं, मुझे इसका नाम तो याद नहीं आ रहा। तो वो बस पता किधर गए डॉक्टर साहब, एक दो नज़र नहीं आया मुझे, बड़े जबरदस्त कुरान की तलावत हैं और इतने मगरब के बाद ईशा तक शाख तक हो, दाढ़ी पूरी यकदम जिंदगी में तब्दील हो, उम्र में जा रहे हैं, उम्र में मुलाकात, चप्पल हाथ में, बड़ी सादगी सब कुछ, इस तरह दुनिया में देखें तब्दीली एकदम आना शुरू, ठक 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 उसमें उनको अल्लाह वालों से मोहब्बत पैदा हो गई, सलाम सलाह से शुरू हो गई। तो पता चला जी वो तो बहुत सख्त बीमार हो गए, बीमार हो गए क्या हुआ, उनकी बड़ी बुरी हालत है, वो तो हॉस्पिटल में। मैंने कारी साहब ही थे शायद के साथ में गया था, पता नहीं, मैं कहा चले यार मिले तो सही उनसे जाके। अब वो गए तो जहाँ बिस्तर पर लेटे, कहने बहुत बुरा हाल है हजरत मेरा, दवाई दे दे कि मुझे मार दी है और मेरा तो बुरा हाल है। अन्ना के समझते हैं डॉक्टर साहब क्या बहुत कुछ बेचारे, एंटीबायोटिक दे देंगे बुरा, भाई हुआ क्या उनको कुछ नहीं, नमाज पढ़ने आए थे। अब देखे नमाज पढ़ने आए थे, नमाज पढ़ने बस मैंने जूता उठाया जी, जूता उठाने के बाद ऐसा मैं समझ रहा बैलेंस मेरा खराब हुआ कि मेरा पाँव मुड़ गया, मुझे स्टोरी बताई, पता नहीं उसमें ऐसा क्रैक आ गया, खुद डॉक्टर थे कहते मैं कही क्या हुआ, उसी वक्त मुझे हॉस्पिटल पहुँचा गया, पता चला उसमें क्रैक आ गया, हड्डी में क्रैक आ गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, हद तक ये कुछ दिनों के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे भाई इतनी रुकावटें हैं, अब ये देखें कितनी रुकावट है इस इरादे की तकमील के, हम तो बड़े चौड़े को समझते हैं, हमने नमाज पढ़ ली है बस, बड़े फने खा है, और कितना रिवॉर्ड अल्लाह पाक ने दे दिया उस नियत का, उस चलने का, उस वजू का। अबू हनीफा तो ये कहते हैं, उनके मजहब तो ये है कि जब कोई आदमी वजू करता है तो जहां जहां वजू का पानी जाता है वहां वहां से गुनाह निकलने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने देखा है कश्फ, साहिब कश्फ आदमी थे, उनको इख्तलाफ हुआ इस बात पर, तो लेकिन उन्होंने देखा कि भाई इस तरह इंसान के हर अज्जा से जो है गुनाह निकलना शुरू हो जाते हैं, ये कम आसान है मेरे दोस्त है। गुनाह क्या है, फबाल, मुसीबत, परेशानी, पता पूछे ना कितना क्या हालत इंसान के अंदर गुनाह की होती है, लेकिन सुबहान अल्लाह, अल्लाह के ने उस रात को तकलीफ जब जैसे वजू करने लगे ऐसा ठंडा कर देता अल्लाह पाक, बिल्कुल सब। ठीक, तो क्या कह रहा था अल्लाह के नबी ने फरमाया इतनी नेकियों के बावजूद, ठीक है एक नमाज पे नेकी है लेकिन फिर भी क्या है फजूल होगा, कुछ नाकाम हो जाएंगे। अब वजह पकड़ने किस वजह से नाकाम बता रहे हैं अल्लाह के नबी, और बताया से जा रहे हैं कि हमने वो काम बिल्कुल नहीं होने देना वरना बर्बाद हो जाएंगे। अपने अमाल को ना देखो बल्कि उन चीजों की तरफ जाए जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसकी हिफाजत करना तो तुम्हें पूरे अमाल मिल जाएंगे, पूरी नेकी मिल जाएंगी, पूरा काम बन जाएगा। वो क्या चीज बताई, क्या चीज है, फरमाया ये जो होगा रोजे कयामत में बर्बादी की वजह, सारी नेकी पहाड़ के बराबर का आदमी ला रहा है वो दबता जाए पहाड़, इतना पहाड़ी कंडम, किस चीज से होगी सारी इसकी बर्बादी, फरमाया उसकी बर्बादी जो होगी अल्लाह की नेमतों की वजह से कालदम हो जाएंगी उसकी तमाम चीजें। नहीं बात समझे, नहीं समझे, अल्लाह की नेमतों की वजह से उसकी जो नेकी है सारी वो दब जाएंगी, कालदम कहते हैं खत्म हो जाएंगी, दब जाएंगी, क्यों कि अल्लाह की नेमतें बंदे पर इतनी ज्यादा हैं, इतनी नेमतें अल्लाह ने अपने बंदे पर अता फरमाता है कि जिसका कोई शुमार ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है। गो वो नेकी लेकर आएगा लेकिन वो नेमतें इतनी ज्यादा होंगी कि वो जो नेकी होंगी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगी। अभी बात समझ नहीं आई आपको, आ गई नहीं, ठीक है थोड़े से आगे समझाता हूं। नेकी तो समझ गई, इसका एक मिसाल भी अलहमद कुदरती आ गई है, नेमतों की तो मिसाल कुदरती आ गई है, ये देखें कितनी अल्लाह ताला हमारे कर्म फरमाते हैं कि इरादा किया उस पर नेकी मिलती, सब नेमत है ना अल्लाह ताला की। तो फरमाए अल्लाह की नेमतें इतनी ज्यादा हैं इंसान को अल्लाह ने अता फरमाई हैं कि वो नेकी को जब मुकाबला होगा तो उसकी जो नेकी खत्म हो जाएंगी अल्लाह की नेमतें बढ़ जाएंगी। तो क्या करें फिर, कहता फिर बेकार गई उसकी सारी, क्योंकि वो तो नहीं, जो नेमतें थी वजह क्या थी कि उसने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया था। वो शुक्र ना करने की वजह से तो मुकाबला किया जाएगा अल्लाह की नेमतों का नेकियों का, तो नेकी तो फेल हो जाएंगी उसकी। बहुत सारा नेमतें अल्लाह ताला की, नहीं समझे बात, क्या पैगाम इसके पीछे, इसके पैगाम यह है कि इतनी नेमतें अल्लाह पाक इंसान को अता फरमाता है लेकिन वो इन नेमतों पर नाशुक्रा है, एहसान नहीं करता, एहसान नहीं मानता, कोई सोचता भी नहीं है, कभी नहीं सोचता। सारी जिंदगी हमारी बेशक हम कितनी अमल करें, अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे उसकी नेमतों पे, तो हमारी जो नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। बात आ गई समझ, हम इबादत करने के बावजूद भी बेकार हो जाते हैं जबकि अल्लाह की नेमतों का हम शुक्र अदा ना करें। नेमतें क्या है अल्लाह की, अब ये तो भाई अब आप सोच रहे हैं क्या क्या नेमतें हैं, क्या 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 सोचे आदमी, ये सोचे नेमतें हैं क्या नहीं इंसान की वजूद से। इब्न अब्बास फरमाते हैं रिद्दल्लाह ताला सबसे पहले जिस नेमत का सवाल होगा इंसान से, सबसे पहले जिस नेमत का सवाल होगा वो क्या होगा, सेहत। ट्रांसफर कर लें कितनी बीमारियां कितने सेहत, अपनी जिंदगी हम देख रहे हैं कि कितनी जिंदगी हमारी बीमारी में गुजरी है और कितनी हमारी सेहत में गुजरी है, ज्यादा सेहत में गुजरी है नहीं गुजरी, ये हॉस्पिटल में रहे हॉस्पिटल तो वो आखिर आकर एक हफ्ता हॉस्पिटल जाता वो मर गए जी लुट गए अल्लाह माफ कर दे अल्लाह यार, ये हफ्ता गुजारना मुश्किल होता है, आखिर अल्लाह को रहम आ जाता है उसको निकाल लेते हैं कि दी देखो हफ्ता ही रखा है इसको भी। सारी जिंदगी जब इंसान को सेहत दी है उस सेहत पे उसने क्या किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया ना शुक्री की, ना शुक्री किस तरीके की, ना शुक्री हम अल्लाह की किस तरह करते हैं नेमतों की, कि उन्हीं चीजों से जो अल्लाह ने हमें दी हुई है उसी से अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं। ये आंख उसकी कीमत क्या बताया आदमी की, क्या है कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की मुझे बताया, इसकी ये सबसे बड़ी नाशुक्री का ये कम नाशुक्री है कि इस आंख का हम क्या इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, किसी आंख के जरिए हम वो वाहियात हरकतें देखते हैं, वो गंदे काम हम करते हैं, वो चीजें हम इस आंख से करते हैं कि जो अल्लाह ताला को नागवार हैं और अजीम तरीन गुनाह अल्लाह ने मना फरमाया। तो शुक्र हुआ ना शुक्र हुई, जबान हाथ कान नाक जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है, अगर ये अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रही है चीज तो ना शुक्र है, और जब हम ना शुक्र हैं तो चाहे कितने अमल कर लें कितने इबादत कर लें आखिरत में उसका बैलेंस नहीं रहेगा। तो हदीस हमें ये पैगाम देती है दोस्तों कि बंदे को कभी अल्लाह की नाशुक्री ना करे, नाफरमानियों से बचे, गुनाहों से बचे। जब अल्लाह के गुनाह अल्लाह की कई बातों को हम यकीन करेंगे उस पर अमल करेंगे तो बंदा खुद खुद शुक्रगुजार बन जाता है, अल्लाह के फजल से शुक्र करने वाला बंदा बन जाता है। देखिए हर चीज अल्लाह की नेमत है, हर चीज अल्लाह की नेमत है, एक रोटी सूखी इंसान खा ले वो बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह उसका भी सवाल करेगा, एक ठंडा पानी गिलास में मिल जाए अल्लाह उसका भी सवाब करेगा, एक खजूर का दाना मिल जाए अल्लाह उसका भी सवाब करेगा। हमारे पास तो मकान गाड़ियां कोठियां और पता नहीं क्या खाने की चीजें और सोफे और घर और बार क्या कुछ घर में नहीं है, और पूरा घर का घर हमारा जो है वो नाफरमान है। जितनी अल्लाह पैसे हमें देते हैं अल्लाह करम फरमाते हैं इंसान को दौलत दे देते हैं, उस दौलत से मुझे बताया क्या ये हमारे बाप की दौलत है या हमारे बाप का दिया हुआ पैसा है, ये अल्लाह का दिया हुआ है और एक एक पैसे का हिसाब वो सबसे बड़ा अकाउंटेंट जो है वो लेगा, वहां बैलेंस शीट बनेगी सही, प्रॉफिट लॉस अकाउंट वहां बनेगा पूरा, कैसे कमाया था कहां खर्च किया क्या तूने खरीदा उसमें क्या नाफरमानी थी, कोई जवाब दे सकता है मुझे बताया उसका, बताया भाइयों, जिंदगी तो बड़ी एहतियात से इंसान को गुजारनी चाहिए, बहुत एहतियात से जिंदगी गुजारे हम लोग। अल्लाह की कसम, आंख बंद हो जाए तो दरवाजा बंद हो जाता है, बस खत्म। अभी तो वक्त है, कैसे कि आज मुझे एहसास हो जाए यार, तो बहुत बड़ी बात है। क्या करे आदमी, अभी तौबा करे पिछले साफ, बोलो सुभान अल्लाह, बात पहुंच गई। अल्लाह ने क्या समझ गया है, मैं तो ये तौबा करता हूँ जनाब, आपने तौबा की है ना, कि अब आज से अगली जिंदगी क्या होगी, बहुत आसान जिंदगी। अल्लाह ताला हर काम जो करूंगा, जो नेमत तूने दी है, वजूद से लेकर पैसे से लेकर कारोबार से लेकर औलाद तक, बिल्कुल तेरे सिस्टम के मुताबिक गुजारूंगा। तेरा सिस्टम क्या है मेरे बाबा, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारूं। बालो कुरान की बरकत में पलट नहीं सकता, और हर आदमी आलिम हो नहीं सकता, हर आदमी अरबी दान हो नहीं सकता, हर आदमी मुहद्दिस हो नहीं सकता। और बार बार हमारे पास भी इतना टाइम नहीं, बेचारे मुफ्तियान के पास भी टाइम नहीं, उलमा कराम के पास भी नहीं, उनकी जान खाते रहें, उनके दिमाग खाते रहें। अल्लाह ताला को आसान तरीका बता, जिस तरीके के साथ हमारी पूरी जिंदगी जो है वो तेरी फरमाबरदारी के मुताबिक हो सके। मैं बताऊं आपको तरीका, करेंगे पक्का वादा। आज भी चेंज तो हो जाए ना, पिछली जिंदगी आज खत्म, वो बिल्कुल बैलेंस नहीं दे सकेंगे अल्लाह को, याद रखना। यह हदीस बहुत जबरदस्त हदीस है, हम बिल्कुल बैलेंस नहीं दे सकेंगे अल्लाह ताला को। हाँ, तौबा करते हैं और तौबा करने के बाद इस तरीके पे जिंदगी गुजारे, इंशाल्लाह पूरे वजूद का शुक्र होना शुरू हो जाएगा, पैसे का शुक्र हो जाएगा, वजूद का शुक्र हो जाएगा, औलाद का। औलाद की मामूली चीज है, उनसे पूछें जिसके औलाद नहीं है, जी 16 साल हो गए जनाब लड़का, या 15 साल हो गए जी बच्चा नहीं, 8 साल हो गए मेरे, कहते जी दो शादी करो, दो भी कर लीजिए कच्चा, मैं तो लड़की चाहता था जी लड़का हो गया लड़की चाहता, तो एक स्टोरी है, क्योंकि ये चीज़ उसके अख्तियार में नहीं है, कौन देता है। हम क्या करते हैं उस औलाद के साथ, मुझे बताए, अभी 6 साल का होने तो पूरे म्यूजिक सिखा देते हैं उसको, पूरे रिदम आते हैं उसको, पूरा डांस आता है उस बच्ची को, बच्चे को बचपन से जो उसको नाफरमानी सिखाते हैं, बड़े होने तक उसको जानवर दहूश बना देता है, और खुद बनाते हैं, माँ बाप बनाते हैं, बिल्कुल बकवास है। इसमें कोई किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, खुद हमारी शैतानियत है कि अल्लाह ने एक नेमत दी है, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी है, सर इससे ही फर्क नहीं पड़ता, आपने कुरान का हाफिज बना दिया, जाके ठोक दो जनाब मौलाना के ऊपर, मस्जिद में बिठा दे मौलाना पे, बस वो मौलाना को दे दिया आधा घंटा, बस वो कहते हैं जब वहां से निकले तो वो जी जिनेद बगदादी बन के निकले, बच्चा बनता तो घर से बच्चा, मौलाना साहब तो कुछ नहीं बना सकते, आधा पौना घंटे में क्या बना सकता है, पूरी जमात है, कितना अखलाक सिखा देगा, कितनी बातें इंप्लीमेंट कर देगा। और तो जमाना ऐसा है कि आप उंगली भी नहीं लगा सकते, भेजा आपने तरबियत के लिए, अब किसी उस्ताद ने तरबियत के लिए कुछ कह दिया, वही आके कहेगा जी यही था, जिसे पकड़ लो, तो बच्चों को कहां से मिलेगी, मुझे बताए तरबियत कैसे मिल सकती। माँ बाप में जो मोहब्बत के साथ प्यार के साथ किसी तरीके से भी अल्लाह की मदद के साथ उसको बनाएंगे, और जब जानवर बन जाते हैं, आधा पागल हुआ होता है, आधे का साइकोलॉजी होता है, आधे पे जिन होते हैं, आधे पे कुछ होते हैं, किसी हालात में होते हैं, फिर पूछते फिरते मर गए हमारे बच्चे को क्या होगा। बच्चा बड़ा होकर खराब नहीं होता है, खराब बच्चा उस वक्त होता है गुड्डी से जब उसको ऐसी दी जाती है, समझ उसको जब ऐसी दी जाती है, माहौल उसको जब ऐसे दिया जाता है, जो समझदार माँ बाप होते हैं बच्चे के पैदा होने के साथ ही उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। मैंने ऐसे घर देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कानों में अजान दी जा रही है, हकीका किया जा रहा है, उसकी पूरी प्लानिंग की दी, घरों से निकल जाते हैं, अपने मुल्कों को छोड़ देते हैं, हिजरत कर जाते हैं उस एक बच्चे की तरबियत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ करते हैं कि पूरी जिंदगी वो बदल लेते हैं। मैं इस दुनिया की बात करूंगा आपके सामने, खुदा की कसम हैरान जाते हैं, नौकरी को बदलते हैं, हालात को बदल लेते हैं, मकानों को छोड़ देते हैं, हिज्जत कर जाते हैं, क्योंकि इस बच्चे को मुझे हमें दे दिया गया है, इस बच्चे को हमने ये नहीं एक आर्टिफिशियल बस कुरान पढ़ा दिया जी हमने फलां कर दिया, नहीं, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है कि ये बच्चा नाफरमान ना हो, बल्कि वो जब रोजे क़यामत में जाए तो इसकी हर नेकी जो है तोली जाए और पूरी निकले। आर्टिफिशियल चीज नहीं बनानी, झटके वाली ऐसा नहीं चलता काम। बिना भाइयों जब हमारा हिसाब होगा ना वहां मिजान पे, तब पता लग जाएगा कितना हमारे पास कुरान है, कितनी नमाजें हैं, कितना जिक्र है, कितने बड़े सूफियों, कितने बड़े हजरत साहब हैं, तो पता लग जाएगा। ना इरादा है, ना मेहनत है, ना कोशिश है, बैठ बस हाथ पैर रख के बैठे, कोई कितने बड़े गम की बात है जो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कि रोजे क़यामत में तुम इतने अमल लेकर आओगे उनको काम ही नहीं करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे. क्यों? कि तुम नाशुक्र थे. उधर तुम नमाज पढ़ते थे, उधर जाके तुम उसी आंखों के साथ हरकतें करते थे, हासिर करते थे. तुम्हें पैसा दिया जाता तो उसी पैसे को तुम नाजायज अपना बाप का समझ खर्च. पैसा एक मिसाल दी अल्लाह पाक ने उसकी, खाद देखें बताइए पैसे खर्च करने की, कि जो मैं पैसा आ रहा है तेरे पास तो इस चीज का एक एहसास दिलाए 2.5% तो है ही तेरा नहीं इसमें से, सुभानअल्लाह. यानी ये एहसास दिला दे कि ये तो सब तुझे एक एहसास दिलाने के लिए का इतनी परसेंट, कि इसका तो तेरा सवाल ही पैदा तो उसको हाथ लगाए 2.5%, ये तो तेरे बाप को भी निकालनी पड़ेगी चीज. मुझे बताए तो पता ये चला कि अगर ये मेरा होता मैं क्यों, ये अल्लाह ताला मुझसे क्यों लेता ये परसेंट चीज, क्यों देता. तो हकीकत नहीं है कि भाई चीज हमारी नहीं, खत्म कर कर देंगे. ये तेरे माँ के पास जाएगा, तेरी बीवी के पास इतना जाएगा, तेरे बच्चे के पास इतना जाना चाहिए, उस पर इतना खर्च होना चाहिए, गरीब जो हमसाए उस पर इतना खर्च होना चाहिए. कोई भी इंसान हो, किसी मजहब का हो, काम दावत उसको भी देनी चाहिए, रिज़्क उसको भी पहुंचा, खाना उसको भी दे, कपड़े उसको भी दे, माल उसको भी दे. बेशक तेरा रिज़्क हलाल है, लेकिन एक ऐसा आदमी जो अल्लाह को नहीं मानता, वो भूखा है, उस हलाल कमाई से उसको दे. बोले सुभान अल्लाह. बन सकता है दहशतगर्द मुसलमान ऐसा? कभी नहीं. कितनी मोहब्बत इंसानियत की पैदा की है कि उस वक्त जिस वक्त अल्लाह का रिज़्क हमारे पास पैसा मौजूद है, उस वक्त कोई इंसान हमने ये नहीं देखना इसका मजहब क्या है, पूछता किसको, सिजदे नहीं, हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं. और उस वक्त कोई दावत भी नहीं देनी उसको कि इस वजह से हम इसको पैसा दे रहे, दावत दे के इस्लाम पे ले आए, बिल्कुल ये नहीं. उस वक्त ये है कि इसका हक है हमारे पर कि हमारे पास सामने जो आदमी खड़ा है सबसे पहले मेरा पड़ोसी है, मैं ना खाऊं बल्कि इसको खिलाऊं. आए किताबें खोल के नहीं बैठ जाना कुरान के, पढ़ो जी ये और तुम्हारे रसूल जी हैं तो हमारे रसूल नहीं है, वो कहेगा भाग जाओ, रोटी देने आओ तुम, मुझे मेरे से टैक्स वसूल करने आया नहीं, ताकि उसको एहसास ही ना हो. एहसास ये हो कि इंसानियत है, सब आदम की औलाद है, कि किधर चला गया, किधर चला गया, अल्लाह चाहे तो उनको भी हिदायत दे सकता है. समझ तो पैसे कितना भी आसान नहीं कर रहे, जेबों डाला है, किसी को खर्च नहीं कर रहे. औलाद महरूम है, बाप के पास बाप नहीं दे रहे पैसा औलाद को कि खर्च कर देते. हक नहीं है क्या? एक हमारे पास बैलेंस नहीं है, पूरे राइट्स दिए अल्लाह पाक ने, औलाद के दी है, बीवी के दी है, बच्चों के दी है. बीवी उधर है तो खावी इधर है, साल दो साल एक साल डेढ़ छह साल पता ही नहीं बीवी की जिंदगी के बच्चे किधर, पैसे कैसे पल रहे हैं, फला बच्चा कैसे पल रहा है, बीवी का हक कैसा है, कुछ पता नहीं. ये लाइफ है, इसका हिसाब नहीं होगा. मुझे बताए कल बच्चा खड़ा हो गया जी तो मेरा बाप ही नहीं है, मैं तो पहचानते ही नहीं इसका कब था, मैं तो उसको अजनबी समझता था, आता ही नहीं था हमारे पास, कब पैदा हुआ, किधर चला गया. वो बीवी बोलेगी नहीं जिसको आपने हक ना दिया हो. मुझे बताएं, वो लड़की बोलेगी नहीं जिसको आपने हक ना दिया हो. तरबियत तो होती है जब आप मौजूद हो. अल्लाह कहेगा तूने तरबियत क्या की है, ये तो हमसायों ने की है तेरे बच्चे की तरबियत, हमसायों ने की है, लोगों ने की है, तेरे घर वालों श्रद्धा तूने क्या तरबियत की उनकी, तूने क्या हिस्सा लिया, बस माल कमाता रहा, खड्डे में डालता रहा. हर चीज का एक हकूक है, इसका जवाब कहाँ देंगे आपके, ये कहाँ जाएंगी नमाज फीस, जिक्र वगैरह कहाँ जाएंगी, इमामे दाढ़ियाँ कहाँ जाएंगी, मुझे बताया. तो आए देखते हैं कि एक ऐसी चीज हम तलाश करें जिसकी वजह से अगर उसको अपने अपनी जिंदगी में ले तो लाइफ में बैलेंस आ जाएगा. हम सूफीज्म की तरफ चले हैं ना, लोगों ने सूफीज्म पता नहीं क्या समझा है, मुझे समझ आता. सूफीज्म हम समझते हैं कि कोई एक अनोखी चीज है, बस ये कि वो कश्फ होते हैं, वो कराबात में छुड़कती है, वो हाथ उठाते हैं तो पानी, ये कोई अजीब कॉन्सेप्ट है. सूफीज्म का मतलब ये कि उनकी जिंदगी में इतनी एहतियात हो जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज वो शरीयत के मुताबिक करते हैं, इसका नाम सूफीज्म है. आज तक जो मैं आपसे बातें करता रहा हूं, मैंने यही की है, दूसरी की है, मुझे बताएं मुझसे बड़ा सूफी कौन होगा. तो फिर आपको हवा में उड़ के दिखाना चाहिए था, और कमाल नहीं है दिखाना, मैं भी दिखा सकता हूँ, दिखाऊं. ये कोई कमाल तो नहीं है, ये तो मच्छर भी उड़ रहा है, तो मक्खी भी उड़ रही है, ये क्या कमाल हवा में. नहीं, कमाल ये है कि जिंदगी पूरी गुजरे ऐसे ही गुजरे सुबहानअल्लाह, कि दुश्मन भी कहें कि यार ये आदमी अच्छा था, अपने तो कहते हैं, लेकिन दुश्मन भी कहें कि नहीं यार बंदा चंगा सी, लड़ाई तो होती रही है लेकिन बनता फिर भी यार ठीक था.
یعنی گواہی دوسرے کو مال دیں, دوسرے مذاہب کے لوگ کہیں کہ یار تھا تو یہ دوسرے مذہب کا لیکن آدمی ہی واز گریٹ پرسن ریئلی, ان جگہوں سے ملے دس دس سال کے بعد وہ لوگ گواہی دیں جب ملے, وہ یا فلاں بندے کو جانتے ہیں, ہی واز دا ویری رائٹ پرسن لائک ریئلی, پتا چلتا ہے یہ ہے کرامت سب سے بڑی, اس کو کہتے ہیں ولی اللہ, کیونکہ اس کے اندر اللہ نے اس نے اللہ کے احکامات کو پکڑا تھا, ایسا بنے تو لطف آتا ہے. تو بھائی اپنی احتیاط سے زندگی گزارنے کا اللہ نے ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے, بہت آسان طریقہ ہے, بڑا ہی آسان طریقہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کوئی ٹیکس نہیں مارا اللہ تعالیٰ نے, کوئی زیادتی نہیں کی ہمارے ساتھ, کوئی دشمنی نہیں کر رہا, بلکہ اتنا بڑا احسان جتایا قرآن سے کہ یہ تو میرا احسان مانو تم, جتنے بھی میں نے تم پہ احسانات کیے ہیں, اب یہاں بھی سن لیں کہ جتنے بھی میں نے تم پہ احسانات کیے ہیں, تمہیں انسان بنایا, تمہیں آنکھیں دیں, تمہیں ناک بنایا, پیٹ دیا, جتنے بھی احسانات دیے ہیں, ان سب سے بڑا احسان یہ دیا ہے کہ تمہیں میں نے اپنے رسول کے تباہ کرنے والا بنایا. تو سب سے بڑا ناشکر انسان وہ ہوگا کہ مومن ہونے کے بعد, لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود, تسلیم کرنے کے باوجود, وہ اوروں کو غیروں کو تباہ کرے, دوسروں کے سہاروں کو پکڑے, اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کے دوسروں کی سنتوں کو ادا کرے. مجھے بتایا وہ انسان ہو سکتا ہے, سب سے بڑا ناشکر انسان وہ ہے. صبح اٹھے تو اٹھے اپنے طریقے سے, غیروں کے طریقے سے, نبی پاک کے طریقے سے نہ اٹھے تو اس نے ساری ذات کا جو عبادت کا ثواب ختم کر دیا. حتیٰ کہ یہاں تک بتایا گیا کہ ایک مومن شکر گزار بندہ, مجھے بتائیں یہ قبض کا نام سنا ہے, قبض جو ہوتا ہے قبض ہے کانسٹیپیشن جس کو ہوتا ہے, اس سے پوچھ اے مر گیا جی, دس دن ہو گئے جی, پانچ دن ہو گئے جی, بڑی دوائیاں کھائی ہیں جی, یہ نہیں, قبض ہوا ہے نا, کتنا بڑا مرض ہے قبض, ساری سے پوچھتے آپ بتائیں. اللہ کے نبی نے کیسا بتایا, سبحان اللہ, یہاں تک بتایا کہ جب تم پخانے جاؤ, ٹوائلٹ میں جاؤ تو اس طریقے پر جاؤ سے نبی اکرم نے بتایا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا آسان ہے جہاں تم فارغ ہو کر آ رہے ہو, بہت بڑی نعمت ہے میری جہاں تمہیں, جہاں سے تمہیں فراغت دے رہا ہوں, تو اس فراغت کا جو احسان اس وقت اترے گا جب تم میرے حبیب کی اتباع کے مطابق وہاں داخل ہو جاؤ گے. بولو سبحان اللہ, ہم سے یہی پوچھ لیا کہ تجھے میں نے پخانے کرنے کی توفیق دی تھی, وہ تجھے تو میں نے ریلیز ہونے کی توفیق دی تھی, یہ کتنا بڑا میرا احسان تجھ پہ ہے, تو نے احسان کا شکریہ کیا تھا, ہم کیا جواب دیں گے, جی ہاں ہم نے کیا تھا, یہ کیا ہاتھ دھوئے تھے جی بس, پھر جا کے پھر ہم نے کھانا شروع کر دیا تھا جی, پھر ہم نے برگر منگا لیے تھے, یہ احسان تھا. اللہ فرمائے کہ اس وقت احسان کا طریقہ تو یہ تھا کہ جیسے میں نے جو دعا بتائی تھی اس وقت, تو وہ دعا پڑھ لیتا احسان اتر جاتا, سب صبح تو اٹھا تھا, مار دیا تھا میں تجھے اٹھایا تھا, تو اس کا احسان یہ تھا کہ تو صرف وہ دعا پڑھ دیتا, جو نبی دعا پڑھتے تھے احسان اتر جاتا تھا. تو یہ یاد رکھ لیں ایک چیز کہ اگر احسانوں کا بدلہ اللہ کو دینا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے, جو جو دعائیں اللہ کے نبی نے جس جس مقام پہ مانگی ہیں وہ ہر مسلمان کو رٹ لینی چاہیے, کپڑا پہنتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے, گاڑی میں بیٹھتے ہوئے, اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے, مواشرت کرتے ہوئے, یہ سب ہے کہ اگر ہم وہ دعائیں پڑھتے رہے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے تو اللہ کے احسان اترتے چلے جائیں. اس کو اس کتاب کو بند کر کے ہم نے چاہا کہ ہم اللہ کے احسان اتار دیں تو کبھی اتر نہیں سکتے. اگر سرخرو ہونا چاہتے ہیں, عمروں کو نیکیوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اپنے اللہ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں, تو ہم تو بوڑھے ہو گئے, دعائیں یاد نہیں, کھانے کی دعائیں یاد نہیں, پخانے سے فارغ ہونے کی دعائیں یاد نہیں, ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ٹوائلٹ میں جانا کہ دعا کون سی مانگے, باہر کون سی مانگے, صبح اٹھے تو کون سی دعا مانگے. ایسی پیاری پیاری دعائیں الحمدللہ کہ سبحان اللہ بستر چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا اس دعاؤں کی وجہ سے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. تہجد کے اٹھنے کی کون سی دعا ہے, وضو کر کے آؤ تو پھر کون سی دعا ہے, تہجد کی نماز شروع کرنے کو پھر کون سی دعا ہے, اور جب آپ صبح کی سنتیں پڑھیں, دیکھیں کتنی پیاری ایک چیز اللہ نے بتائی, آپ اٹھے ہیں, اللہ نے سب کچھ کرایا ہے, آپ نے گھر میں وضو کیا ہے, پھر گھر میں آپ طریقہ تو یہی ہے, گھر میں آپ وضو کر کریں یا باغے آتے ہیں, اور یہ کتنی بڑی آپ اس کا کیا جواب دے گا کہ یہاں کے آپ گرم پانی استعمال کرتے ہیں مسجد کا,
मुझे इसका जवाब दे दें, क्या आपके घर में बंद हो गए गर्म पानी, क्या वहां टॉयलेट नहीं है, क्या ये जायज है कि हम इस मस्जिद में आके अपने घर छोड़ के आके वजू करें, और इतने बड़े स्वाब को छोड़कर जो घर से वजू करके आता है वो ऐसा जैसे अहराम बांधकर हज पे जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप घर का पानी बचाना चाहते हैं, नहीं, सुस्ती, वहीं जाएंगे ये रास्ते उधर ही बैठेंगे, आराम से करेंगे, तीन चार गप्पे मारेंगे, फिर ये गलत, मैं आराम से नहीं कहता लेकिन ये गलत है, साफ है, ये तो मौलाना बताएंगे। आप इतने बड़े स्वाब को छोड़ के आ रहे हैं, घर में आके मस्जिद का गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्जिद की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका सर मैं एक सवाल पूछता हूं, इसका जवाब दे सकते हैं आप? इसका क्या जवाब दें? तो लपूछे कितने, ये तो मेरी मस्जिद था, मेरा घर था। ये तो उन लोगों के लिए होता है जैसे दूर से कोई आ रहा है, बीच में रास्ते में वजू टूट गया, कोई मुसाफिर है बेचारा, उसको नहीं मिला, तो उसमें आके जनाब अल्लाह उसने वजू कर लिया। ये आम चीज तो नहीं है कि घर है मेरा दो कदम पे हो, मैं आ रहा हूँ वहां कुश्ती ने चलाते हो मुंह में मसवाक मारिए कि भाई मस्जिद में वजू करेंगे, तो कोई मसला नहीं बनता। अकल तस्लीम नहीं करती इस बात को, ये सब जवाब दे चीजें, हर चीज का एक जवाब दिया जाएगा। मैं हर पॉइंट गए तो यहां तो पकड़े गए, मुफ्त में पकड़े गए मस्जिद में वजू करके। हाँ बैठे हैं, वजू टूट गया, फिर आप करें, या बहुत दूर से आप आ रहे हैं और घर नहीं जा सकते, फिर आप करें। जब सहूलत के साथ आप घर से निकल रहे हैं, वहां आराम से वजू करके, खुशबू लगा के, कपड़े पहन के, दुरूशी पढ़ते, अल्लाह को याद करते हैं, करोड़ हाँ करोड़ दर्जों के सवाब आप ले लेंगे। करेंगे दोस्तों, नाराज तो नहीं ना? शाबाश, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कब सवाब मिलेगा? जब इन तमाम चीजों की दुआएं मांगते आएंगे। ये दुआएं जो अल्लाह के नबी ने हमें बताई, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये ग्रेट सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देख लो, जाहिरी सुन्नत को तो असर करते हैं, लोग तारीफ करें जी बड़े नेक लग रहे हैं, लेकिन असल सुन्नत है इस पर आदमी कम चलता है, तो ये रिया है, मुनाफकत है सबसे बड़ी। जो जाहिर पे आए ना, तो सबसे पहले उसको ये सब कुछ कर लेना चाहिए, उसको जाहिर का तभी शायद कहते हैं इस शक्ल सूरत बनाने से पहले पिछले जमाने तो इजाजत नहीं थी इन चीजों की, तो उस वक्त मिलती थी जब नफ्स खत्म हो जाता था किसी मुरीद का, दस दस पंद्रह पंद्रह साल लगते थे तब इजाज़त देते थे, तो ये चीज़ पहन सकते हैं, तो ये चीज़ कर सकते हैं, ताकि नफाक ना हो जाए। मैं एक बात आप बताऊँ, हैरान हो जाएंगे, इस जमाने की मेरे नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह जिनके मैं सारे बड़े ऊँचे ऊँचे लोग हैं, लेकिन जहाँ तक आज ये समझता है कि उलमा कराम में जो आज मुकाम है हदीस में और फिका में हर चीज़ में, दो भाई बड़े ज़बरदस्त हैं, एक बाप और दो बेटों को ऐसा छोड़ गया, तो कमाल है। एक रफी उस्मानी रहम मुद्दज़ला अली, एक तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अली, अजीब शख्सियत है। मैं बड़ा गौर से सोचता था कि यार इनकी बातों में एक अजीब सुनते तो बहुत है, हदीस सुनाते हैं तो एक अजीब रंग है, बात करते हैं तो एक अजीब रंग है। आपको तकी हमारे इलाके के हैं, कराची के बैतुल मस्जिद मुकर्रम की मस्जिद है, वहीं मैं नमाज पढ़ता रहा, जुम्मे की वो वहीं आते थे, बहुत बड़ी मस्जिद, हमारे तो खैर मामलों से डिफरेंट था, इसलिए आपको बता रहा हूँ, हम तो जिंदगी की जानते हैं उनको। तो वो बात पता जब चली तो अजीब थी कि फरमाते हैं कि इन दोनों भाइयों को पकड़ा हर मुफ्ती शफी साहब ने, जो उनके वालिद थे, कितने बड़े आदमी थे, हर थानी रहमतुल्लाह के खलीफा थे, दोनों भाइयों के तैयार हो गए बिल्कुल, उनको फिका सिखा दिया, मुफ्ती बना दिया, एवरीथिंग आ गया, बिल्कुल प्राइम हो गए दोनों भाई, बाप की तरबियत पर जनाब आला से इलम ले लिया, और जब रंग आना शुरू हुआ उन पर, उनके जब आने लगी बुलावे आने लगे जनाब वहां तक ये तक, उठा के दोनों भाइयों का हाथ पकड़ा, किसके सुपुर्द किया? डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह के सुपुर्द किया। वो आलिम नहीं थे, वो तो डॉक्टर थे, आलिम नहीं थे, इतने बड़े आलिम की औलाद, दोनों इतने बड़े आलिम सुपुर्द किया जा रहा है एक ऐसे आदमी के जो आलिम नहीं है, लेकिन क्या है कि वो ऐसा आदमी के उसने भी हजरत थानवी रहमतुल्लाह से तरबियत हासिल की हुई है, अब उनके खलीफा थे डॉक्टर अब्दुल आरफी रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी सोबत लिए साजिद दोनों माहौल देखे। तो वो फरमाते हैं कि जब अपनी जिंदगी बता रहे हैं उनके बड़े भाई कहते हैं हम दोनों भाइयों को हाथ पकड़ के वहां दिया, उनके हाथ सर दिया, उनके कहा जी आप इनको बैत कर लें और इनको आप तसव्वुफ सिखाएं तस्किया की लें, वो कह के छोड़ दिया, कहता अब हम उनके सुपुर्द हो गए। तो फिर रोए और रो के कहने लगे कि कसम खुदा की खा कहता हूं कि मेरे बाप भी थे, मेरे उस्ताज़ भी थे, मेरे बड़े बड़े मोहसिन गुजरे हैं इस वीकेंड से, لیکن میں کہتا ہوں قسم اٹھا کہتا ہوں کہ میں لفظ نہیں ہے کہ میں شاید آخرت بھی اگر کسی کا سام نہ اتار سکوں تو ڈاکٹر عبدالحی تھا ہمارے شیخ تھے. کہ آج ہم بالکل پیدل زیرو ہوتے اگر ہمارے والد صاحب ہم ان کے سپرد نہ کرتے. ان کا ایک واقعہ سن, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کس طرح انسان تربیت حاصل کرتا ہے اور احسان مند انسان بنے گا آخرت میں کون لوگ بنتے ہیں, محنت چاہیے. کہتے ہیں جس ہمیں سپرد کیا گیا ان کے تو انہوں نے بہت ہی منیف آدمی تھے, میرا تعلق ہے ان سے, بہت ہی حسین گفتگو ان کی ہوتی تھی, بڑے منہمی انسان تھے, بڑے حلیم آدمی تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب. کہ دیکھ کے آدمی نور آتا تھا الحمد للہ. اتفاق سے جو فکر ان کو فکر ان کو فرمائے بالکل وہی انہوں نے مجھے بھی عطا فرمائے تھے فکر کہ تم یہ کام کرنا. اللہ والوں کا سٹائل ہوتا ہے کہ وہ تربیت تو ایک جیسی کرتے. تو کہنے لگے کہ انہوں نے ہمیں سب سے پہلے جو حکم دیا وہ ایسا بڑا زبردست ایک عالم کے لیے جو تیار ہو اتنا بڑا عالم ہو, 10 سال تک ہمیں تقریر نہیں کرنے دی. کتنے سال؟ 10 ایئرس. ان کو حکم نہیں تھا کہ تم کسی تقریر میں جاؤ, جمعہ تک نہیں پڑھانے دیا. 10 سال پوری زندگی گزر گی. کہتے 10 سال کے بعد انڈیا سے ایک بہت بڑے عالم تھے, مجھے سے نام یاد نہیں آ رہا, ان کے مدرسے میں کوئی جلسہ تھا بہت بڑا, تو انہوں نے ان کو بلایا تو کہنے جی ہمیں تو اجازت نہیں. کہیں اجازت نہیں ہے؟ وہ بڑے حیران کہ کون اجازت نہیں دیتا. کہ ہمارے شیخ نے اجازت نہیں دی, ہم تو نہیں جا سکتے. کہتے یہ کیا سوچ سکتا ہے؟ کہتے آپ پوچھیں, آپ تو نہیں پوچھ سکتے. وہ آئے, انہوں نے ان سے بات کی کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ ان کو اجازت دے دیں. تو حضرت نے پھر وہ تو چلے گئے. پھر کہتے ہمیں بلایا, آپ بلا کے کہ ہاں تم یہاں تقریر کر لو, یہ اپنے آدمی ہیں. اور پھر تھرمت میں ایک چیز دکھاتا ہوں. اندر گئے تو اتنے خط کا تھپا لے کر آئے اور ہمیں دکھا کہ یہ جو خطوط ہیں یہ اس کی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں 10 سال تک تقریر نہیں کرنے دی. معلوم ہے کون سے خط ہیں؟ یہ خط حضرت شیخ محمد ذکر رحمۃ اللہ نے آپ کے متعلق مجھے لکھتے رہیں اور فرمائے ان کی تربیت ایسی کریں کہ ان کے اندر ایک چیز آپ نے ختم کرنی ہے تاکہ دنیا کے اندر یہ مشہور ہو جائیں دونوں بھائی. کہ ایک چیز صرف آپ نے ڈاکٹر صاحب ان کی ختم کرنی ہے. وہ کیا چیز تھی؟ فرمایا کہ ان میں سے ریا نکالنی ہے اور شہرت نہ ہو, ان کو عزیز ہو کہ دنیا میں شہرت نہیں چاہتا. کہتے اس کا یہ کام میں نے تمہارے پر کام کیا تھا. اور یقین ہے وہی ایک چیز ان میں جو مجھے اندر لگتی تھی کہ چیز کیا ہے ان کے اندر جو اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. عام حدیثیں وہی لوگ سنتے ہیں کہ کتنا اثر کیسے پیدا ہوتا ہے کسی شیخ کی تربیت میں رہ کے. الحمد للہ ان کی چیزیں میسر آ گئی. کتنا بڑا آسان ہے. تو میرے بھائیو وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں, ان کی تربیت میں ہم نے جو سیکھا وہ یہی سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کیسے ہم نے گزارنی ہے. پریکٹیکل ہماری زندگی میں وہ چیز آ گئی. اب ہر کام جو ہم کرتے ہیں, ہر زندگی کے صبح سے لے کے جو کام ہمارا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت کون سی دعا پڑھی, آپ نے اس وقت کون سی دعا پڑھی, آپ نے کون سی دعا پڑھی, کپڑے کون سی دعا. ہر وقت ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم دعا پڑھتے رہتے ہیں. تو میرے بھائی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں. اور یہ احسان ہے بہت بڑا اللہ کی نعمتوں کو اتارنے کا, اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کیا تو ہم کسی نعمت کا بھی اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں اتار سکیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.